તારીખ 22/4/1997 શ્રી સ્વાનુભૂતિ દર્શન પ્રશ્ન 159 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 112
પ્રશ્ન 159 પ્રશ્ન ક્યા હૈ निर्विकल्प दशा प्रकट करने की कोई विद्या यानी कला हो तो कृपा करके समझाइए। ये प्रश्न दो प्रकार से मुमुक्षु को होता है। किसी मुमुक्षु को जानकारी करने का कुतूहल वृत्ति रहता है, अपनी भूमिका तो कोई निर्विकल्प दशा होने की तो होवे नहीं। अभी तो प्रथम भूमिका में परिभ्रमण की चिंता भी हुई नहीं हो, और प्रश्न पूछे निर्विकल्प दशा कैसी हो इसकी विद्या और कला हमको समझाइए। ऐसी जो कुतूहल वृत्ति है, ये कुतूहल वृत्ति से कोई फायदा नहीं है। वो बात करेंगे तो भी उसके कोई पल्ले पड़ने वाली नहीं है। दूसरा, कोई मनुष्य को भावना से भी ये प्रश्न उठता है, मुझे सम्यक्त्व की भावना है, स्वरूप में समा जाने की भावना है, अंतर्मुख होने की भावना है, ये निर्विकल्प अंतर्मुख दशा कैसे होती होगी, वो जिज्ञासा में भी उठता है। जिज्ञासा भावना पूर्वक होवे तो ठीक है, भावना पूर्वक नहीं होवे और कुतूहल वृत्ति से प्रश्न उठे तो वो ठीक नहीं है। ऐसे प्रश्न प्रश्न में दो प्रकार होते हैं, अपने को देख लेना चाहिए। ये प्रश्न अपने को क्रम से आया है स्वाध्याय में, अपन तो क्रम से ग्रंथ पढ़ते हैं, तो क्रम से वो बात आई, तो जब क्रम से वो बात आई तो ये प्रश्न हमें भी उठे इधर, तो किस प्रकार से उठता है, भावना से उठता है या कुतूहल वृत्ति जानकारी करने के लिए उठता है, को अपना चेक कर लेना चाहिए, अपने भावों का तपास तलाश कर लेना चाहिए।
ज्ञानी पासे एम के आना मांगो आना मांगो
नान की मांगनी नहीं करना, भक्ति की मांगनी करना, वो तो कृपाल देव का लक्षण है, वो बात अलग है। समाधान, भेद ज्ञान की धारा प्रकट करनी, उत्तर तो क्या देते हैं कि निर्विकल्प होने का कारण भूत परिणाम निर्विकल्प होने के पहले कैसे होते हैं, समीप में निर्विकल्प दशा आवे उसके पहले नजदीक के परिणाम कैसे होते हैं, फिर इसके कारण वो तो अलग बात है, वो अपेक्षित बात होगी, लेकिन यहाँ तो जो बात करेंगे कि ये कारण है वही कार्य है, इस कारण से निर्विकल्प हुआ जाता है, तो परिणाम कैसे होते हैं, निर्विकल्प होने के पहले परिणाम कैसे होते हैं, कि भेद ज्ञान की धारा प्रकट करने, जिसको निर्विकल्प होना हो उसको भेद ज्ञान के प्रयोग तक आना चाहिए, और भेद ज्ञान का प्रयोग भी धारावाही चले, धारावाही चले माने सतत चले उसको वेद ज्ञान की धारा कहते हैं, धारा मैंने धारावाही सतत चले। ऐसी दशा आए तब निर्विकल्प हो सकता है, कभी वेद ज्ञान हुए कभी नहीं चले, कभी चले कभी नहीं चले, उसको निर्विकल्प दशा नहीं आती। जिसको धारावाही वेद ज्ञान चलता हो उसको ही निर्विकल्प दशा आती है। भाव भाषण के बाद जो विज्ञान धारावाही चलता है तो उसको निर्विकल्प स्वानुभव होता है, इसके पहले नहीं होता है। इसको भाव भाषण भी नहीं है, क्योंकि निर्विकल्प दशा तो निर्विकल्प स्वरूप में निर्विकल्प भाव से एकाग्रता है। निर्विकल्प दशा क्या चीज है कि अपना जो निर्विकल्प स्वरूप उसमें एकाग्रता, निर्विकल्प रूप से एकाग्रता हो गई, उसको निर्विकल्प दशा कहते हैं। तो जिसके ज्ञान में निर्विकल्प स्वरूप है ही नहीं उसको एकाग्र कहाँ होना है, तो ज्ञान में जाना ही नहीं कि निर्विकल्प स्वरूप कैसा है, तो उसको एकाग्रता किस में होना है। जो अनजानी चीज में तो एकाग्रता हो ही नहीं सकते। हाँ? जिसने जो फल खाया स्वाद लिया उनमें वो तन्मय हो सकता है, तो अनजाना फल हो जिसका स्वाद का पता नहीं है उसमें लीनता कैसे आएगी, स्वाद ही मालूम नहीं। तो भाव भाषण में अनुभवांश से प्रतीति आती है, अनुभवांश में शांति का स्वाद अब भाषित हो गया, मैंने लग गया, भाषण होना मैंने लगना, भाव का लगना, उसको भाव भाषण कहते हैं। तो इसमें अनुभवांश है, भाव भाषण में अनुभव का अंश है। भेद ज्ञान की धारा प्रकट करनी कि जो भेद ज्ञान के पीछे विकल्प टूट करके निर्विकल्प दशा की प्राप्ति हो जाए, ऐसी धारावाही निर्विकल्प दशा प्रकट करनी चाहिए कि इसके पीछे भेद ज्ञान चलते 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 पीछे निर्विकल्प दशा हो जाए। तो उसमें एक और भी बात है कि जब से भेद भाव भाषण हुआ है तब से स्वरूप ज्ञान में आया कि ऐसा मेरा स्वरूप है, तो उसका लक्ष्य हो गया। तो भेद ज्ञान स्वरूप लक्ष्य से चलता है, तो बात ज्ञान अर्पित है, अध्यार है। स्वरूप लक्ष्य पूर्वक जिसको सतत भेद ज्ञान चलता हो उसको भेद ज्ञान करते 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 निर्विकल दशा की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा बनता है। समयसार की 73वीं गाथा में ये विषय चला है। जैसे कोई स्वरूप का निश्चय करता है तो स्वरूप का निश्चय किया वो स्वरूप कैसा है कि स्वरूप ही निर्विकल्प है। जिस स्वरूप का निश्चय हुआ वो अपना स्वयं का स्वरूप है और वो निर्विकल्प है। निर्विकल्प स्वरूप का निश्चय होने के बाद निश्चय का एक बल प्रकट होता है, निश्चय होने से निश्चय का बल प्रकट होता है। तो वहां निश्चय का बल कैसे प्रकट हुआ कि जोर से आने लगा कि मैं निर्विकल्प हूँ, मैं निर्विकल्प हूँ, मैं तो ऐसा निर्विकल्प हूँ, मैं तो ऐसा निर्विकल्प हूँ, मैं तो ऐसा निर्विकल्प हूँ, इसका जोर आने लगा। वेद ज्ञान में, वेद ज्ञान में वहां एक दृष्टांत लिया है बहुत सुंदर कि जैसे समुद्र में कोई वाहन चलता है, समुद्र में होड़ी चलती है, वाहन चलता है, उसके सड़ पे एक पक्षी बैठा है, तो पक्षी का स्वभाव क्या है कि एक जगह बैठने का नहीं है, उसके पंखे हैं तो उड़ता रहता है थोड़ी थोड़ी देर में, लेकिन उड़ कर जाएगा कहाँ? समुद्र का जो पानी है वो तो बैठने की जगह है ही नहीं, ये तो समुद्र में तो वो तरंग बड़े बड़े होते हैं, वहां तो बैठ सकता नहीं पक्षी, पानी पर तो पक्षी बैठ नहीं सकता, तो थोड़ी देर में उड़ करके कहाँ आएगा? वहां पर आएगा। उड़ करके कहाँ आएगा? वहां पर आएगा। ऐसा निर्विकल्प स्वरूप का जिसको निश्चय हुआ हो उनको विकल्प बाहर जाएगा, लेकिन बैठने की जगह नहीं मिलेगी, है ही नहीं बैठने की जगह, फिर निर्विकल्प स्वरूप करा के बैठेगा, उपयोग बाहर जाएगा, बाहर उसको स्थिर होने की कोई जगह मिलेगी नहीं, उस स्वरूप में स्थिर हो जाएगा, ऐसा दृष्टांत दिया पौत्र विज्ञान। वहां तो आचार्य महाराज ने बहुत सुंदर शैली से बात किया है कि निर्विकल्प स्वरूप के निश्चय से कोई ऐसे परिणाम हो जाते हैं, खिंचाव होता है अंदर में, अद्भुत से अद्भुत आश्चर्यकारी सिद्ध पद अपना, सिद्ध स्वरूप अपना, उसका खिंचाव उतना होता है कि विकल्प का शीघ्र वमन हो जाता है, ऐसा शब्द लिया। वमन माने क्या? वॉमिट। जैसे आपने खीर खाई और भाई भी और खाई भी और भाने से कुछ ज्यादा खाई, भाने से ज्यादा खा ली, और ये जो मकान मालिक है वो बहुत प्रमाणिक है, ज्यादा किराया लेता नहीं है। ओवर ईटिंग प्रोड्यूस इज पॉइजन, इसका पॉइजन हो जाता है, पॉइजन है वो फॉरेन एलिमेंट है, बॉडी को सीप नहीं करता, तो बॉडी उसको या तो टट्टी हो जाएगी या तो वॉमिट हो जाएगी, रहने नहीं देगा उसको, निकल जाएगा बस। तो जितने प्रेम से खाई थी, खाई थी इसलिए बहुत रुचि से खाई थी, फेंका बात, रोकना चाहे कि नहीं मैंने तो बहुत अच्छी लगी थी इसलिए मुझे को रखनी है, तो रख नहीं सकेगा, सकेगा नहीं, फेंकेगा बात जोर से। ऐसे विकल्प में पहले रस रुचि था, जीव को राग का रस रुचि था, बहुत भाता था उसको, ये मेरा बेटा, ये मेरा घर, ये मेरी संपत्ति, मेरी पत्नी, ये मेरा पति, विकल्प बहुत भाता है जीव को, तो अशुभ है ये, कोई शुभ नहीं है, ये जितने बताए ये तो सब अशुभ है, लेकिन कभी मंदिर में जाता है तो शुभ विकल्प करता है तो वो भी उसको भाता है, आप तो मुझे भक्ति का भाव बहुत अच्छा है, तो दो पद के जगह तीन पद गा लिया, एक पद और गाया, या चार पद के जगह पांच पद गाया, एक घंटा के जगह डेढ़ घंटा भक्ति कर लिया, ये नहीं देखता है कि पाता है फिर थकान क्यों आता है, जो परिणाम उसको मीठा लगता है, अच्छा लगता है, रस आता है, उसमें थकान क्यों आता है वो चेक नहीं करता, क्यों बंद कर देता है तुम, जब तुमको अच्छा लगता है तो छोड़ता क्यों है? लेकिन जीव का इतना बुद्धिमानी है ही नहीं, इतनी बुद्धिमानी नहीं है, कमकल है, हमें चेक करना चाहिए ऐसा क्यों होता है। वो विकल्प अच्छा लगता था, अब निर्विकल्प दशा होने में स्वरूप का इतना खिंचाव होता है, अट्रैक्शन होता है, आकर्षण विकल्प को गमन कर देगा, ऐसा शब्द दिया है। बहुत अच्छा भाव लिया। फिर क्या कहा कि वेद ज्ञान की धारा प्रकट करनी कि जिसके पीछे जिस वेद ज्ञान के पीछे विकल्प टूटकर निर्विकल्प दशा की प्राप्ति हो जाए, सहज हो जाए। यह प्रयत्न तो स्वयं को ही करने का रहता है। इस प्रकार का प्रयास पुरुषार्थ तो खुद को ही करना होता है। यह भेद ज्ञान मात्र धारणा पूर्ता नहीं है, राग और ज्ञान भिन्न है ऐसा एक समझ में आया। धारणा मैंने क्या समझ की, समझ को धारण कर रखा उसके नाम धारणा, उतनी सी बातें नहीं है। समझ में आया कि राग भिन्न है, राग का स्वरूप आकुलता है, ज्ञान भिन्न है, ज्ञान निराकुल स्वरूप है, उतना नहीं चले। धारणा का काम नहीं है ये, धारणा से निर्विकल्प दशा का फल आने वाला नहीं है, वो बात जरूर है। इसलिए यह भेद ज्ञान मात्र धारणा पूर्ता नहीं है, परंतु अंतर में से भेद ज्ञान की धारा प्रकट होवे, अंतर में से ज्ञान और राग भिन्न भिन्न अनुभव करने का पुरुषार्थ हो रहा है, ये विचार नहीं है, धारणा है वो विचार है, और पुरुषार्थ है प्रयास है वो प्रयोग है, दोनों अलग चीज है। जो धारणा है वो विकल्प है, विचार है, और वेद ज्ञान के प्रयास में तो अनुभव का प्रयोग है। ज्ञान का स्वाद अलग है, साग का स्वाद अलग है, दोनों का भिन्न भिन्न अनुभवन करना प्रयत्न से उसको वेद ज्ञान का प्रयास कहने में आता है। वो अंतर में से वेद ज्ञान की धारा प्रकट हो गए, यह स्वविकल्प भेद ज्ञान धारा की बात है। भेद ज्ञान तो स्वविकल्प दशा में ही चलता है, जिसका फल निर्विकल्प दशा है। स्पष्टीकरण दिया है कि यह स्वविकल्प भेद ज्ञान धारा की बात है, तो भेद ज्ञान धारा तो स्वविकल्प दशा में ही चलती है। जो सम्यक दर्शन मैंने निर्विकल्प की पूर्व में प्रयत्न से प्रकट होती है, ऐसी धारा में पुरुषार्थ होता है। सम्यक दर्शन निर्विकल्प दशा के पहले होता है ऐसा प्रयास।
सम्यक दर्शन के बाद में जो ज्ञान धारा है
वो भी भेद ज्ञान स्वविकल्प दशा के भेद ज्ञान
तो सहज है,
सहज है।
यहाँ पर प्रयत्न है,
यहाँ प्रयत्न दशा है, मुमुक्षु की भूमिका प्रयत्न दशा वाली है, और फिर वो सहज हो जाता है। निर्विकल्प दशा आत्मरस स्वरूप रस तीव्र हो जाने से होता है। निर्विकल्प दशा निर्विकल्प स्वरूप का अत्यंत अत्यंत प्रचुर रस पैदा होने से दशा निर्विकल्प हो जाती है, तो उसकी परिणति बन जाती है। क्या होता है उसकी परिणति बन जाती है, वो तो निर्विकल्प परिणति है। ज्ञानी की जो ज्ञान धारा है वो निर्विकल्प परिणति है, वो आत्म परिणति है, वो आत्म सदृश दशा है। जैसा आत्मा है वैसे इसकी दशा है, और रागादि भाव उससे अलग पड़ते हैं, उसमें तन्मय होते नहीं, तो सहज वेद ज्ञान चलता रहता है, वो अलग बात है। उसका स्वरूप अलग है, इसका स्वरूप अलग है, ये प्रयत्न दशा है, परिणति नहीं पैदा हुई है। हाँ, वो परिणति पैदा हुई है भाव भाषण वाले, भाव भाषण के स्टेज में आया तो जिस स्टेज में आएगा उस स्टेज की परिणति बनेगी, उतनी परिणति बनी है। लेकिन जो ज्ञान दशा में परिणति है वो नहीं है। तो फर्क क्या पड़ता है, दोनों को भेद ज्ञान कहते हैं, फर्क क्या पड़ता है वो प्रश्न हमने सुगानी जी को फर्स्ट क्वेश्चन टेस्टिंग क्वेश्चन वो किया था। कुछ पत्र पढ़े थे, सब नहीं पढ़े थे, कुछ पढ़े थे, तो मालूम हुआ कि उन्हें बात तो आखिरी जो आखिरी हद की बात है जैन दर्शन की वो कर दी है। और प्रत्यक्ष परिचय में उन्होंने वो पूछा कि सम्यक दर्शन के पूर्व में भी वेद ज्ञान चलता है और सम्यक दर्शन के बाद भी वेद ज्ञान चलता है, क्या फर्क पड़ता है। तो वो बात तो कौन बता सकता है, क्योंकि ऐसा कोई छानबीन वहां सोनगढ़ में हुआ नहीं था, और तो सोनगढ़ में रहते भी नहीं थे, उनको तो गुरुदेव का प्रवचन का भी इतना लाभ नहीं मिलता। अगर कोई बात सुनी हुई बता सकते हैं, लेकिन वो बात तो सुनने में इन दिनों में नहीं आती थी, चर्चा का विषय भी नहीं था, और वो तो वहां रहते भी नहीं थे। तो उन्होंने अपने अनुभव से वो बात बताई, तो हमको मालूम हो गया कि अनुभव हमको दोनों बात का अनुभव हो चुका है, वो बात मालूम हो गई। तो देखे समूह दर्शन के पहले दो भेद ज्ञान चलता है, क्या प्रश्न बुंदा इतिहास उठे वो तो पहले बोलो कलकत्ता में क्या करते चाली गए थे एक मास परिश्रम मंदिर जी में प्रवचन होते थे, वो प्रश्न उठाया था। वो पहले होता है भेद ज्ञान, उसमें ज्ञान और राग भिन्न है, उसका एक ही समय में अनुभव नहीं होता है, सूक्ष्म कालांतर रहता है। मैं ज्ञान स्वरूपी हूं ये चलता हुआ राग भिन्न है, दोनों में भिन्न करता है, प्रयत्न से पुरुषार्थ से भिन्नपना करता है, वो भिन्नपना करने में थोड़ा सूक्ष्म काल लगता है, एक साथ नहीं होता है। ज्ञान और राग की भिन्नता एक ही काल में नहीं होती, एक ही समय में नहीं होती है, सूक्ष्म काल होता है। सूक्ष्म काल क्यों होता है, क्योंकि निर्विकल्प होने की तैयारी है, पहले थोड़ा ज्यादा काल जाता है, जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती है वो काल सूक्ष्म होता जाता है। पहले भेद ज्ञान में थोड़ा अंतर ज्यादा लगता है, फिर भेद ज्ञान चलता है, फिर सूक्ष्म भेद ज्ञान हो जाता है, फिर अनुभव होता है, तो ज्ञान और राग एक समय में भिन्न भिन्न रहता है, उसमें विकल्प विचार करना नहीं पड़ता है, सहज रहता है। वहाँ एक ही समय में ज्ञान और राग की भिन्नता अनुभव गोचर है, और यहाँ राग और ज्ञान की भिन्नता में समय लगता है, प्रयत्न दशा है इसलिए कुछ समय लगता है,
बिल्कुल भिन्न नहीं पड़ा है, समय लगता है, तो मतलब भिन्न तो नहीं पड़ा है।
हाँ, भिन्न उसी वक्त नहीं पड़ा है, उसी वक्त नहीं पड़ा है, बाद में पड़ता है। तो सूक्ष्म काल जाता है तो लगता है कि इसी वक्त भी पड़ गया, ऐसा भी लग जाए।
अच्छा,
क्योंकि काल बहुत सूक्ष्म है और इतना कोई जात तलाश करने का पर्याय पर उपयोग नहीं चलता है, तो अनुभव है इसलिए बता दिया उन्होंने अपना अनुभव से चलता है, उसको ऐसा विकल्प नहीं भी आ रहे, उनको तो ऐसा लगे कि मेरा धारावाही चलता है, मेरा जो विज्ञान है वो धारावाही चलता है, लेकिन सूक्ष्म काल उसमें रहता है। वो बात उन्होंने कही, तो बात तो खत्म हो गई। तो अपना मुद्दा वो है, तो वो प्रयत्न दिशा है, क्या है वो प्रयत्न दिशा है। और उसके बाद खुद उसको टिकाए रखे, वो विज्ञान चलता है तो धारा को वो चालू रखे, तो उसमें क्या होता है, ये शरीर और विभाव पर्याय में नहीं, शरीर से भी भेद ज्ञान होता है और रागादि विभाव है, शुभाशुभ भाव है, उससे भी भेद ज्ञान होता है। तो होता है इसमें मैं नहीं हूँ ऐसा लगता है, तो मैंपना पूरा तो निर्विकल्प दशा में जाएगा। अब तो मैंपना छुड़ाने की कोशिश चलती है, क्या है भेद ज्ञान में, शरीर और राग में विभाव में मैंपना हो रहा है अनादि से। वो ज्ञानी की भाषा में, शास्त्र भाषा में उसको अस्तित्व ग्रहण कहते हैं कि अपना अस्तित्व शरीर में और राग में ग्रहण कर दिया है और इतना वहां डेरा तंबू लगाया है कि वो उठाने में ताकत पड़ती है जीव को। शरीर में हूँ और राग में मैं पड़ा, ये मेरा भाव, मेरा विकल्प, मेरा राग बहुत स्थापित कर दिया है, उसको उत्थापन करने का है। क्या चेंज ऑफ अलाइनमेंट कहते हैं, स्थापना की है उसको उठाना है, तो वो उठाने का प्रयास को भेद ज्ञान कहते हैं। मैंपना उठाने का प्रयास, शरीर में और विभाव में मैंपना कर रखा है उसको उठाना, उसको तोड़ने का जो प्रयास है वो भेद ज्ञान का प्रयास इधर चलता है मोक्ष की भूमिका में।
निर्विकल्प आनंद के बाद में जो ज्ञान धारा है उसमें तो मात्र ज्ञान की धारा,
उसमें ज्ञान में मैंपना अनुभव गोचर होता है और राग में बिल्कुल मैंपना अनुभव गोचर नहीं होता है। राग होता है ज्ञानी को, ज्ञानी को राग पूर्ण वितराग नहीं होगा तब तक होता रहेगा, अनिवार्य रूप से होगा, लेकिन उसमें मैंपना अपनापन अनुभव गोचर होगा नहीं, उसमें परपना अनुभव में आएगा। राग पर है, ये राग है सो पर है, ऐसा अनुभव
होगा। मेरा प्रश्न क्या है, निर्विकल्प आनंद के बाद में ज्ञान धारा हर निरंतर चालू रहती है, वो तो ज्ञान धारा नाम किया है उसको, और निर्विकल्प से पहले जो ज्ञान धारा है उस ज्ञान धारा में तो दूसरे गुण भी गर्भित है।
तो ज्ञान धारा नहीं है, निर्विकल्प के साथ पता धारा नहीं होती है, प्रयत्न चलता है,
प्रयत्न वाली धारा में तो
प्रयत्न एक साथ चलता है प्रयत्न, तो उसमें प्रयत्न में मुख्य कार्य दो गुण का है, एक ज्ञान का और एक पुरुषार्थ का, वीर्य का, दो गुण का मुख्य कार्य है। मिथ्या श्रद्धा अभी चालू है लेकिन पतली 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 हो रही है, लेकिन श्रद्धा सम्यक नहीं हुई है, इसलिए श्रद्धा अपना पॉजिटिव काम नहीं करती है, श्रद्धा का नेगेटिव प्रोसेस चालू है, तो मिथ्या श्रद्धा मंद होकर के अधिक मंद होकर के अधिक मंद होकर के उपशम हो जाएगी, तो उसको उपशम सम्यक दर्शन कहने में आया। और चारित्र में वितरकता हुई नहीं तो चारित्र गुण का कार्य नहीं है, तो चारित्र में तो शुभ विकल्प होता है, भेद ज्ञान के समय में जो शुभ भाव होता है विकल्प वाली दशा, उतना चारित्र गुण का कार्य है, तो वो भी राग रूप है तो साधन नहीं है, श्रद्धा भी मिथ्या रूप है इसलिए साधन नहीं है, तो साधन इधर ज्ञान का है, ज्ञान और पुरुषार्थ वीर गुण दोनों का सूक्ष्म काम करता है, दो ही गुण है वो धारा में, वो विज्ञान की धारा में दो गुण का काम है।
और मिथ्या तो अवस्था में जो ज्ञान धारा चलती है मिथ्या तो थी, उसमें तो सभी गुण है
नहीं, परिणमन में तो सभी गुण एक समय में सभी को होता है, एक समय में सभी गुण का परिणमन सर्व जीव को होता है, चाहे निबोध की अवस्था हो चाहे सिद्ध की सिद्ध दशा हो, तो सब गुण परिणमन करता है, लेकिन किस भूमिका में किस प्रकार का परिणमन होता है उतनी सी बात है।
मिथ्या श्रद्धा पतली होना और मिथ्या सजा का पतला होना और फिर भी उसके पीछे 70 करोड़ का बल होना, इन दोनों का मेल कैसे मिलेगा?
नहीं, प्रायोग लब्धि में तो 70 करोड़ तो योग्यता रहती नहीं, अंत कोड़ाकोड़ी में तो प्रायोग लब्धि में आ जाता है, तो प्रायोग लब्धि भी अनंत बार हो चुके, यहाँ तो बहुत आगे बढ़ा है जी, और सम्यक दर्शन के समीप आ गया है, तो उसका मिथ्या तो उतना पतला पड़ गया है, उतना पतला पड़ गया है कि टूटने के योग्य हो गया है, छूटने के योग्य हो गया है, ऐसी दशा में हो गई है, इतनी बात लेना है। बल मैंने नहीं, उसमें क्या है कि जब तक मिथ्यात है से होता है, एक शक्ति रूप से और एक व्यक्ति रूप से, व्यक्ति रूप नहीं है ना, बल व्यक्ति क्षीण हो गई है, व्यक्ति क्षीण हो गई है तब तो पतला पड़ा ऐसा बोलने में आता है, लेकिन योग्यता रूप शक्ति है, क्या योग्यता रूप शक्ति है, अगर वो तोड़ेगा नहीं तो हो सकता है को 70 करोड़ तक चला जाए बढ़ करके, जैसे एक आदमी सीढ़ी चढ़ता है, सीढ़ी चढ़ते 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 ऊपर तक आया, एक दो सीढ़ी बाकी रह गई, उसमें पैर फिसला, पैर फिसल गया तो पैर तो एक ही सीढ़ी में फिसला, तो एक एक सीढ़ी चढ़ता है ना, तो पैर फिसलने में तो क्या हुआ, एक ही सीढ़ी में पैर फिसला, लेकिन हो सकता है वो पूरा नीचे गिर जाए या पूरा नहीं भी नीचे गिरे, पैर फिसला तो एक दो सीढ़ी में अटक जाए और पकड़ ले तो नहीं भी पूरा गिरे, लेकिन पैर फिसलने में हो सकता है कि वो तो नीचे पूरा पूरा भी चला जाए, ऐसे मिथ्यात है और फिसला तो 70 करोड़ तक चला जाएगा, निगुद में भी चला जाएगा, लेकिन अब इतनी ताकत नहीं है, आगे बढ़ेगा तो मिथ्यात को छोड़ देगा, तोड़ देगा, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा
आगे बढ़ गया,
फिसलने का सवाल अपने को लेना भी नहीं है, तो इनका प्रश्न शू है, मिथ्यात है एवं 70 करोड़ कर्म बांटवानी शक्ति है, तो दरेक नो मिथ्यात ना परिणाम 70 करोड़ बांधतु नहीं, तीव्र मिथ्यात्मा होता है, तीव्र मिथ्यात का परिणाम हो तो 70 करोड़ दर्शन मोह की स्थिति बांधे, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रत्येक मिथ्या दृष्टि जीव प्रत्येक समय में 70 करोड़ को बांधता है, ऐसी कोई परिस्थिति है ही नहीं, ऐसी परिस्थिति नहीं है, जितना मन मिथ्यात है उतनी स्थिति कम होती है, मिथ्यात का रस जितना ज्यादा उतनी स्थिति घाती की ज्यादा, घाती मैंने दर्शन में होगी ज्यादा, अघाती का फर्क पड़ता है, घाती अघाती में उल्टा से होता है, उसका बहुत तीव्र होता है, उसको बहुत तीव्र होता है, वो तो सपने में भी करने लायक, मित्रागी देव गुरु शास्त्र और ज्ञानी पुरुष सत्पुरुष, उसकी विराधना सपने में भी जीव को होनी नहीं चाहिए या किसी को भी होनी नहीं चाहिए, सब भयंकर परिणाम है, सबसे भयंकर परिणाम है, कितना इससे बड़ा पाप विश्व में कहीं भी नहीं है, कतल खाना चलाने से भी ज्यादा पाप है। जानबूझकर अनजाने करो तो भी बड़ा पाप है, जानबूझकर करता है उसमें तो बहुत रस आ जाता है, तीव्र रस आ जाता है। क्या विधि चलता है अभी? कि शरीर और विभाव पर्याय को मैं नहीं, मैं तो चैतन्य ज्ञायक हूँ, ये मैं नहीं ये मैं हूँ, ये विकल्प पूर्वक भाषा बनाई। फिर विकल्प में थोड़ा शॉर्टकट हो जाता है, विकल्प तो संक्षिप्त होकर के निर्विकल्प हो जाने, तो ये मैं नहीं ये मैंने शरीर और राग, और ये मैं हूँ मैंने ज्ञान में हूँ, तो उतना लंबा विकल्प नहीं करे तो ये मैं नहीं ये मैं ऐसा चलेगा। प्रत्येक शुभाशुभ भावों में अंदर में मैं जुदा हूँ, प्रत्येक शुभाशुभ भाव होता है तो जीव की अवस्था में, लेकिन भीतर में मैं अलग हूँ, क्योंकि मैं ज्ञान स्वरूप ही हूँ और मेरा ज्ञान स्वरूप मिट करके फिट करके नाश हो करके राग रूप को भी होता नहीं, क्योंकि ज्ञान चलता रहता है, ज्ञान ज्ञान रूप से ही चलता रहता है, राग रूप को भी होता नहीं, राग राग रूप से चलता रहता है, ज्ञान रूप को भी होता नहीं, वो प्रत्यक्ष सभी को अनुभव गोचर है। इसलिए जीव की अवस्था में राग होने पर भी भीतर में दोनों भिन्न है, आपस में दोनों भिन्न है, भिन्न का भिन्न रूप से अनुभव करना वही सम्यक है, वो सम्यक अज्ञात पार्टिकल में भिन्न का भिन्न रूप से अनुभव करना वही सम्यक है। प्रत्येक शुभाशुभ भावों के भीतर में मैं भिन्न हूँ, भिन्न ही हूँ, जुदा जुदो जोश हूँ, भिन्न ही हूँ, जोर देते ना पुरुषार्थ काम करता है, भिन्न ही हूँ, इस जाति के अंदर उस प्रकार के अंदर भीतर सहज धारा प्रकट होवे ऐसा करना अपने हाथ की बात है, मैंने अपने पुरुषार्थ की बात है, वो तो प्रारब्धाधीन बात नहीं है, ये पुरुषार्थाधीन बात है, इसलिए हाथ की बात है, जितना पुरुषार्थ करे उतना काम होएगा, जितना पुरुषार्थ हो उतना काम होएगा। ऐसी सहज विज्ञान की धारा प्रकट करे तो उसके पीछे निर्विकल्प दशा सहज आती है, तो ऐसा भी एक शैली से बोलने में आता है कि जब अपने स्वरूप को देखा, भाव भाषण में क्या हुआ, अपने स्वरूप को देख लिया, जब देखा तो उनको लगा कि वो मेरा स्वरूप ऐसा है कि उसके आगे सम्यक दर्शन चतुर्थ गुण स्थान क्या केवल ज्ञान की पूर्ण दशा भी कुछ कुछ नहीं है, इतना महान है, तो उसके पीछे उनका परिणाम दौड़ने लगता है आकर्षित होकर। इस दौड़ में सम्यक दर्शन को लाना नहीं पड़ता, सम्यक दर्शन सामने से चला करके उठ करके आता है अपने पास, तो ऐसा ऐसा भाव हो जाता है वहाँ स्वरूप आश्रित, स्वरूप के प्रति ऐसा भाव होता है कि सम्यक दर्शन को सामने से आना पड़ता है, लाना पड़ता स्वरूप को इस तरह से देखो, अपने स्वरूप को इस तरह से देखो भाव भाषण होकर के, सम्यक दर्शन को आना पड़े लाना पड़े, इसीलिए कहने की प्रथम शैली है, मतलब क्या है कि सहज आता है, सहज समझ दर्शन हो जाता है, क्योंकि दृष्टि हो गई स्वरूप पर की, तो पर्याय की पड़ी नहीं है, पर्याय की दरकार नहीं है। इसलिए 165 पत्र में कृपालु देव ने लिखा कि हमको तो ज्ञान तो प्रकट हो गया है, अभी हमको मोक्ष की इच्छा नहीं रही। ऐसा क्यों कहा? कि हमारा स्वरूप हमने ऐसा प्राप्त कर लिया, अब मोक्ष की क्या जरूरत है? मोक्ष की कोई जरूरत हमको नहीं है, सर्वस्व हमको मिल गया। जरूरत तो उसको है कि जिसको सर्वस्व नहीं मिला उसको, जिसको सर्वस्व मिल गया उसको कोई जरूरत नहीं, और जरूरत रही तो सर्वस्व हुआ नहीं, ये बात हो गई। चालू होता रहता है, उसको रखते हैं करते हैं ऐसा कहने में आता है, बोला होता रहता थमता नहीं, खुद रोकना चाहे तो रोक सकता नहीं। जैसे किसी का स्वजन मर गया है, उसको आप बोलो तुम मत रो, तो क्या वो रोना बंद हो जाता है क्या?
मुंह छुपा करके भी रोएगा, मुंह छुपा करके भी रोएगा,
क्यों? वो खुद ही नहीं रोक सकेगा, उसका अपनापन उतना है वो खुद रोक सकता नहीं है, परिणाम की सहज स्थिति होती है। विज्ञान की धारा की उग्रता होने पर और ज्ञान धारा की उग्रता होने से दोनों एक ही बात हुई, और उपयोग की तीक्ष्णता होने से, और उपयोग सूक्ष्म और तीक्ष्ण हो गया स्वरूप को ग्रहण करने के लिए, विकल्प टूट करके निर्विकल्प दशा प्राप्त होती है, सहानुभूति होती है, उसको सहानुभूति कहने में आता है। उस तरह से विज्ञान की उग्रता होने से, विज्ञान तो चलता था अब उग्रता में आया, यानी बल तीव्र हो गया, पुरुषार्थ का बल तीव्र हो गया, तो उपयोग सूक्ष्म हो गया, स्वरूप सूक्ष्म सूक्ष्म स्वभाव है उसको ग्रहण करके, उपयोग थम गया तो निर्विकल्प दशा हो गई। जैसा स्वरूप निर्विकल्प है, स्वरूपाकार खुदाकार एकाकार दशा हो जाती है, उसको निर्विकल्प सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कहने में आता है। इस तरह से इतनी पैराग्राफ में बात तो पूरी पूरी किया है, और भी विशेष थोड़ा विस्तार से भी कहेंगे।